अब ये चीजें तो हमने एक जनरल देख ली थी, लेकिन शुक्र बिल जवारे की लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, दिल का शुक्र कब आएगा? जब तस्लीम और रजाम होगी। जुबान पे शुक्र कब आएगा? जब दिल में भी शुक्र होगा। आप कहते कि मुनाफ़कत क्या है? दिल में ना शुक्री, जुबान पे शुक्र। ये लिख लीजिए जुमला, निफाक क्या है? दिल में ना शुक्री है लेकिन जुबान पे शुक्र है। ईमान कब बनता सच्चा? जब दिल की भी शुक्र गुजारी हो और ईमान की भी। और हम सबको भी चेक करना चाहिए, बात जब हम जुबान से कहते हैं शुक्र है लेकिन असल में वो शुक्र नहीं होता, वो शिकवा होता है। हम शुक्र की जगह शिकवे करते हुए दिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि शुक्र के तीन मुख्तलिफ एंगल क्या हैं, तीन मुख्तलिफ मानी होते हैं। नंबर एक, नेमत शनासी। शुरू में हमने बात की थी ना नेमतों को पहचानना, तो सबसे बड़ी चीज़ ही यह कि आप उस नेमत को पहचानें। नेमत नेमत ना लगे तो शुक्र कहाँ से आएगा? ठीक है, तो मोमिन नेमत को नेमत समझता है। हमारा हाल ये कि जो चीज़ मिल जाए कहते हैं ये तो नेमत कोई नहीं, और जो ना मिले उसके पीछे भाग रहे होते हैं। ईमान वाले को इस बात का यकीन होता है कि जो कुछ उसके पास है वो अल्लाह की नेमतें और वो अल्लाह ने दी हैं। जब बंदा इसको पाता है फिर इबादत में भी मज़ा आता है और अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है। दूसरी कैफियत क्या होती है कि बंदा अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमत उसको मिली उसको खुशी से कबूल करे और रजा और रगबत के साथ ले। यानी नेमत की कदर तो कर ली आप, ये कि नेमत मिली है तो उसको लीजिए। इसके बारे में आप मिसाल लिख सकते हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। तकरीबन 18 साल बीमार रहे, बिल्कुल हैंड टू माउथ थे, लेकिन जब अल्लाह ने दिन बदले, सेहत भी मिली तो ऊपर से सोने की टिड़ियां बरसी, सोने की जैसे पत्रियां बरसी, तो उसको उठाने लगे, दोनों हाथों से जमा कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि आप तो इतने सब्र वाले हैं, आप क्यों इस तरह बेसब्रे हो रहे हैं? कहा नहीं, ये मेरे अल्लाह की नेमत है, इसको मैं दोनों हाथ से लूंगा। तो जब बंदे को कोई नेमत मिले तो खुशी से ले। किसी को कोई चीज मिल भी जाए तो हम तब भी नहीं खुश होते। और फिर अफसोस के साथ कहूंगी कि आज हमने अपने बच्चों को इतना ज्यादा नाशुकरा बना दिया, बड़ी से बड़ी चीज़ आप उनके आगे ला कर रख दें, खुश नहीं होते, फिर नक्स ही निकलेंगे, ये नहीं वो नहीं। तो नेमत क्या है? माशाल्लाह मेरे अल्लाह ने दिया है। आप इमेजिन करें ना, कोई आपको गिफ्ट दे तो आप ढीला मुँह करके शुक्रिया तो खुशी हो और रख दें उधर, ना स्माइल ना कोई अच्छी फीलिंग्स, देने वाले को खुशी नहीं होगी ना। तब देने वाले के पीछे अल्लाह ताला का हाथ महसूस करें। जब बंदे को कोई नेमत मिले तो लें, खुशी से लें। ना शुक्री होती है, अल्लाह औलाद की नेमत दे आप अबॉर्शन करवा दें। अल्लाह कहता है औलाद मिले, आप कहते हैं जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो जहाँ नेमत मिले उसको खुशी से ले ले और उसको कम ना समझे, जैसी जो मिली उसको ले ले, कोई एहसास कमतरी का शिकार ना हो। तीसरा इसका क्या होता है कि नेमते देने वाले की तारीफ बजा लाए, यानी फिर अल्लाह की तारीफ के गुन गाए। अब ये कैसे होगी तारीफ? दो तरह से होती है। एक तो आम तारीफ है, यानी इंसान अल्लाह ताला की तारीफ करे, अल्लाह ताला आप कितने करीम हैं, आप सो नाइस, आपने जो मेरे ऊपर मेहरबानी की, यानी जुबान से बंदा ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जो अल्लाह ताला को खुश कर दें। दूसरा इसका दर्जा क्या होता है कि अल्लाह की नेमतों को पाकर खुश दिली के साथ उसको इंजॉय करो, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसको इजहार करो। मसलन आपके पास स्वेटर हैं तो आप सर्दियों में ठुठरते फिर रहे, तो ये मुश्किल बात है, ये आपने अपने पर खुद ही ज्यादती कर ली। अल्लाह ताला की तो कोई ऐसी डिमांड नहीं थी कि आप सर्दियों में भी पतले कपड़े पहने फिरें। नहीं, सूरह दोहा आयत नंबर 11 है, वाम अभी नेमति रब्बी का फहद्दिस, तो रब की नेमतों को बयान करो। अब यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बात लेकर तो लोगों ने 5-5 लाख का दुल्हन का जोड़ा भी जायज़ करा दिया। कहते देखो अल्लाह खुद कहते वाम अभी नेमति रब्बी का फहद्दिस, जलाओ लोगों को, तड़पाओ उनको, देखो क्योंकि हमारे पास इतनी दौलत है। तो आइए देखते तादी से नेमत क्या होती है। बहुत खूबसूरत ये अल्लाह ताला की टर्म है जो कुरान में इस्तेमाल हुई है। देखिए लफ्ज़ क्या है, तहदीस, हदीस से, हदा सजा हदीसु, बात को कहते हैं ना खोलना, नई चीज़, नेमतों की बातें करना। कैसे होगी तहदीस से नेमत? नंबर एक, उस नेमत को इस्तेमाल करो और अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करो। कपड़े अल्लाह ने अच्छे दिए, पहनो, कोई मना नहीं करता, लेकिन उनको पहनकर इताअत और फरमाबरदारी के काम करो। ये है पहला दर्जा। ये नहीं कि नेमत पाकर नाफरमानियां कर लो, जिस दिन ज़्यादा अच्छा खाना खाओ उस दिन ज़्यादा ही बुरे हालात हो तुम्हारे अमल के हिसाब से। दूसरा इसके बारे में क्या है कि अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें दी हैं इसकी कदर शनासी भी करो, फिर इसको शुमार करने की कोशिश करो اور زبان سے اس کی تعریفیں کرے اظہار کرو کہ مجھے فلاں نے دیا. اب یہاں سورۃ دوحیٰ کی تفسیر میں یہ آیت آئی ہے نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس نعمت کے اظہار کی بات کی تھی؟ تو یہاں اصل میں دیکھیے تحدیث نعمت سے مراد دین کی نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے, اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کریں. صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ تحدیث نعمت کیسے کرتے تھے آپ کو پتہ؟ بس ابو بکر دولت مند تھے نا, حضرت عثمان دولت مند تھے, عبد الرحمن بن عوف دولت مند تھے. انہوں نے تحدیث نعمت اس دولت کو اللہ کے راستوں میں لوٹا کر کیا, یہ مطلب ہے. یعنی تمہیں اللہ نے دولت دی ہے تو اب یہ نہیں کہ دوسروں کے سامنے دینے سے ڈر جاؤ کہ نہیں نہیں لوگ دیکھیں گے تو ریاکاری ہوگی. نہیں, ابو بکر کے پاس ہے تو ابو بکر دے رہے, اور دوسروں کو رغبت بھی ہوتی ہے. نعمتوں کو صرف اپنے اوپر لگائے رہنا اور اللہ کو وہی 2-2.5% دے کر ترخوا دینا, یہ تحدیث نعمت نہیں ہے. تحدیث نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا اس کو اللہ کے بندوں سے شیئر کریں, یتیموں کو, لاوارثوں کو. پیچھے آپ دیکھیں صورت میں یہی باتیں نا, یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, بھٹک گئے تھے اللہ نے راہ دکھا دی, نادار تھے تونگری دے دی. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ دوسروں کو فائدہ دو اپنی نعمتوں کے ساتھ, پھر فائدہ ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, ایک کوشچن خود سے کر لیجئے کہ اچھے کپڑے پہننا پھر یہ کیا ہے؟ تحدیث نعمت میں کیا خوب اچھے کپڑے پہننے برے؟ تو چند واقعات سن لے, پھر اس پہ بات کروں گی کیونکہ یہ پریکٹیکل چیز ہے. ابو رجا کہتے ہیں حضرت عمران بن حسین ہمارے پاس سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ریشم کی کڑی خوبصورت شال اوڑے ہوئے ہیں. اتنی خوبصورت شال میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی, واقعی بڑا نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے تھے. اس بارے میں پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جس شخص پر انعام و اکرام کیا ہو اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہو تو اللہ تعالیٰ شکرانے کے طور پر اس نعمت کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ چادر ریشم کی نہیں تھی, کیونکہ مردوں کو ریشم تو نہیں پسند ہوتا نا, کڑھائی اوپر جو ہوئی ہوئی تھی وہ ریشم کی تھی. اب نعمان بن بشیر سے ایک واقعہ ہے, اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے ہوئے, فرمایا جو شخص چھوٹی اور معمولی چیزوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ بڑی چیزوں کا کیسے کرے گا. اور ممنونیت یعنی من کہتے ہیں احسان کو, یعنی اللہ تعالیٰ کے احسان مندی کا اظہار کر سکتا ہو. مراد کہے کہ جو شخص چھوٹی اور معمولی چیزوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے وہ زیادہ اور بڑی چیزوں پر کیسے حق ادا کرے گا. جو شخص بندوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا, یہ بات نوٹ کر لیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, بندوں کا نہیں, آپ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہے یا ان کا شکر ادا نہیں کر رہے تو آپ اللہ کا بھی نہیں کر سکتے. آپ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو آپ اللہ کا بھی نہیں کریں گے. اسی طرح زندگی میں جس بندے نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ کی نعمت کا اظہار شکر ہے, اور تحدیث با نعمت سے روح گردانی کفران نعمت ہے, اور جماعت سے وابستگی باعث رحمت ہے, اور تفرقہ انتشار عذاب ہے. تو گویا کہ اس روایت میں ہمیں اشارے مل گئے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے, بندوں میں کوئی اگر آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, کھاؤ پیو صدقہ خیرات کرو, خوب پہنو اوڑھو, بشرطے کہ تکبر اور اسراف اور فضول خرچی اور اتراہٹ نہ ہو. اللہ بندے پر اپنی نعمتوں کے ظہور کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. حسن کہتے ہیں, بکثرت نعمت الہی کا ذکر خیر کیا کرو. تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کی نعمت کا ذکر اصل میں اللہ کی نعمتوں کی قدر شناسی ہے. اسی طرح کچھ اشعار ہیں جس کے اندر یہی بات مل رہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو کیا ہے؟ تو بات لکھ لیجئے کہ فخر نہ ہو, دوسروں کو چھوٹا دکھانا نہ ہو, اس وجہ سے نہ ہو. اس لیے اب آگے چند رولز ہیں, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے لباس, اچھی گاڑیاں, اچھے گھر کس حد تک ان کی بات ہے. تو تین طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. تحدیث نعمت کے لیے ضابطہ کیا ہے؟ نمبر ایک, نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی بھی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نعمت بھی استعمال کرتے ہیں, اللہ کی تعریفیں بھی کرتے ہیں, یہ ہیں بہترین لوگ. دوسری قسم کے, نعمتوں کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ہی نشکرے بنے, چشم پوشی کفران ہے. تیسرے قسم کے لوگ کہیں کہ اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ اس اللہ کی دیوی نعمت کے حقدار تھے حالانکہ وہ اہل نہیں تھے. سب سے اچھے کون سے ہیں؟ پہلے والے. اور جب آپ اپنے اوپر اس کو لے کر سوچتے ہیں تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز انسان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے, جب اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. इसी तरह से आप देखिए कि इन्होंने लिखा है कि कुछ जाहिल और नादान है जो बड़ी चमकते हुए कपड़े पहनते हैं, अच्छे लिबास पहनते हैं, गाड़ियां अच्छी कर सब कुछ करते हैं, अच्छी चीजों को खा के कहते हैं जी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इसके बाद अल्लाह ताला ने हमें क्या करने का हुक्म दिया है। नबी सल्लम की एक और हदीस है कि शेही बिगाड़ने वाला और बिला वजह दिखावा करने वाला ऐसे जैसे किराए का लिबास पहनने वाला। सोचिए जरा, हम में से कोई कपड़े मांग के पहनता है? नहीं पहनता। तो यहाँ भी यही बात है कि दिखावे के लिए पहनना ऐसे ही है जैसे किराए के कपड़े पहन लिए, गोया के दूसरों का लिबास पहनकर 30 मार खां बन गया। इसी तरह से एक और रिवायत आती है, अल्लाह के नबी की तरफ नस्बत देते हैं ये बुजुर्ग, कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ इस हाल में कि मेरी हालत बड़ी बुरी थी, तो मेरी बुरी हालत देखकर आपने पूछा कि तुम्हारे पास रुपया पैसा है? मैंने कहा जी है। कहा किस किस्म का माल इसबाब है? का हर तरह का मौजूद है, ऊँट भी हैं, बकरी घोड़े सब कुछ है, गुलाम भी हैं, सब है। तो आपने फरमाया अगर अल्लाह ने तुमको नेमत से नवाजा है तो तुम्हारे ऊपर इसका असर देखना चाहिए। तो क्या पता चला, तहदीस नेमत उस वक्त मतलूब है जब अल्लाह ने नेमत दी हो। ये नोट कीजिएगा जुमला, भी हम इस पे बात करेंगे। अब सवाल पैदा है कि नेमत तो दी हुई है तो हम छुपा ले, कब छुपा सकते हैं नेमत को? जब हसद का डर हो, नजरे बद का डर हो, किसी के नुकसान के पहुंचने का डर है, चोरों का, डाकुओं का। अब इस पे हम बात करते हैं। अब देखिए कि ये बहुत प्रैक्टिकल बात है ना, तो इसको हम देख लेते हैं कि इस्लाम हमसे क्या चाहता है। पहली चीज ये नहीं है कि आप क्या खा पी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। यकीन कीजिए, आप 100 रुपए का भी जोड़ा लेंगे ना या जूता लेंगे और 1 लाख का भी लेंगे, अल्लाह की नज़र में वो दोनों मच्छर का पर है। इतनी बात याद रखिए। दूसरा एक असूल याद रखिए, हर बंदे की पहुंच और उसकी फाइनेंशियल जो होती है ना हैसियत, उसके हिसाब से कीमती और सस्ती चीज़ का मेयार फ़र्क होता है। बात समझ रहे? एक औरत है, उसके मियाँ 10,000 कमाते हैं सिर्फ, तो उसकी नज़र में कीमती जोड़ा 500 करोन होगा। एक दूसरी औरत है, उनके हस्बैंड 1 लाख करोन कमाते हैं, तो उसके लिए हो सकता है 10,000 का जोड़ा भी सस्ता ही हो। फ़र्क समझ रहे हैं ना? तो दूसरा असूल क्या लिखा हमने कि कीमती क्या है और सस्ता क्या है, ये हर बंदे की हैसियत से फ़र्क है। तीसरा असूल लिखिए, कीमती है या सस्ता है, असल बात यह है कि उसको पहन कर करते क्या हैं। अब मैं जहाँ पहन कहूँ वहाँ बाकी चीज़ों को भी ले आइएगा, क्योंकि कपड़े पहन लें, जूते पहन लें, अच्छे घर रख लें, गाड़ियाँ रख लें, ये सब में आता है। इस्लाम का मिजाज क्या है कि नेमतों को इस्तेमाल करो, जुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करो, दिल में कदरदान हो और उनके बाद अच्छे अच्छे काम करो। मसलन आप गाड़ियों पर आते हैं, अगर आपकी ये गाड़ी ना हो या आपके पैसे ना हो और आप बस का टिकट ना ले सकें तो क्या आप यहाँ पहुँचते? मर्द मस्जिद में जाते अगर गाड़ी पास ना होती तो, ना फिर गाड़ी बहस है ना कोई। आप चलते हैं, गाड़ियाँ कितनी किस्म की हैं, मैं लैंड क्रूज़र है, मर्सिडीज़ है, सुजुकी है, वैन है, आपकी मर्जी है। अल्लाह की नज़र में यह सब बराबर है। कोई शख्स मर्सिडीज़ में से निकलता है या वो टूटी हुई सुजुकी में निकलता है, दोनों बराबर है। ये हम इंसानों की कमजोरी कोताह नजरी होती है, हाय इतना अच्छा कुछ भी नहीं है, जन्नत की गाड़ियों के आगे तो कोई गाड़ी नहीं है। वही याद कर लेना कॉन्सेप्ट कार जो बन रही है दुनिया में, आप देख के राल टपकाते हैं ना, जन्नत में तो उसको कोई नहीं लेगा, ये कोई इशू ही नहीं है। फिर एक और चीज़ भी इस बारे में याद रखिए कि, बल्कि मैं एक बात ही बता देती हूँ, हमारे एक उस्ताद हैं अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, शेख अशरफ साहब हैं, उनसे एक दफ़ा ये सवाल हमने पूछा था कि क्या अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते खाना खाना, क्योंकि एक ऐसा दौर गुजरा था कि अच्छा खाना खाना भी लोगों ने बेदीनी समझना शुरू कर दिया था चंद रिवायतों को सुन सुना कर। तो उन्होंने बात का जवाब कैसे दिया, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पहनो, अब इतने में हम खुश हो जाएंगे, और फिर कहते हैं और खूब अच्छे काम करो। ये है असल मसला, अमल बिल जवारे या शुक्र बिल जवारे, कह के खा के पहन के गाड़ी में बैठ के उस घर में जाकर काम क्या करते हो, उस नेमत का हिसाब बहुत सख्त होगा, चाहे वो 100 करोन की है चाहे 1 लाख करोन की है, जिसको पाकर अल्लाह की नाफरमानी की। ये है शुक्र का नजरिया, ना अच्छे कपड़ों की कोई बात है ना बुरों की है। तो लिहाजा एक चीज़ याद रखिए। अब दूसरी चीज़ एक और भी है, कैसे पता चले कि हम दूसरों को दिखावे के लिए पहन रहे हैं या हम तहदीस नेमत के लिए पहन रहे हैं? कोई आप में से इसका जवाब देगा?
जी वही बात है कि फिर पता इस तरह ही चल सकता है ना कि अगर मैं उस अच्छे कपड़े को पहन के उसमें यहाँ पे हम लोग आते हैं दीन के काम के लिए और अच्छी इशात के लिए, तो फिर नजर आता है कि अल्लाह के दीन के लिए यूज किया इस चीज को।
जी काफी हद तक ठीक है। आप देखिए कि मैं आपसे ही पूछती हूँ कि हम अमूमन कहाँ अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं और कब पहनते हैं? आपने कहा शादियों में पहनते हैं, ठीक है, पार्टियों में पहनते हैं, ईद पे पहनते हैं, और कब पहनते हैं? रोज ही पहनते हैं। अब तो हम जब किसी भी जगह जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो क्यों पहन के जाते हैं? खुशी का इजहार करते हैं कि हम आपके घर आए तो बड़े खुश हुए। आप इमेजिन करें ना, आपने किसी को खाने पे बुलाया और आप उनके लिए सारा दिन घर साफ कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, खुश हैं कि मेरी दोस्त मेरे घर आएंगी। अब आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी दोस्त आई अजीब कुचड़ी मुचड़े कपड़ों में, नाइट सूट में, बाल बिखरे हुए, तो आप पहली नज़र में क्या सोचेंगी? किसको मेरे घर आने की खुशी नहीं हुई? हम जब किसी जगह जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, पहनने ओढ़ने से लेकर घर साफ करने से वक्त हमारी एक नीयत होती है कि हम उस बंदे को इज्जत देते हैं कि मुझे आपको बुलाकर बड़ी खुशी हुई कि मैंने अच्छे कपड़े भी पहने, घर भी साफ किया, खाना भी अच्छा पकाया। ये मेहमान की भी इज्जत होती है, ये मेज़बान की भी इज्जत होती है, ठीक है। अब जिस चीज़ को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं वहाँ खुश होते हैं। और आप अपने मूड्स के साथ चेक कर लीजिए, जहाँ आप खुशी से जाते हैं आप खूब तैयार होके जाते हैं, और जिस दिन सिर्फ सास के कहने पर कहीं चलें तो आप कहते ऐसे ही ठीक हो, मियाँ कहीं ले जाए आप कहते ऐसे ही ठीक हो। होता है हर जगह, तो आप एहतमाम से नहीं तैयार होते ना। बस जिस बंदे के दिल में जिस जगह की वैल्यू होगी, उसको इज्जत देगा, उसको कदर देगा ना, वो उसके लिए तैयार होगा। सीधी सी बात है। मैं सोचती हूँ कि अगर हमारा ये किबला ठीक हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि शादियों में तो हम बिल्कुल ही सिंपल तौर पे जाएं, क्योंकि वहाँ के हाल हालात इस तरह के आजकल नहीं होते कि वहाँ हम पहने, अगर हम पहन भी लेते हैं तो और फितने की बात होगी। मैं कुरान पढ़ने वालों की बात नहीं कर रही, मैं आम दुनिया वालों की बात कर रही हूँ कि जब इंसान दीन को इज्जत देता है, करे खुजू जीनत को मिन द कुल्ली मस्जिद, सूरत अल-अराफ में आता है, हर नमाज से पहले अच्छी जीनत लो, तो ये मतलब नहीं है कि अच्छे कपड़े क्या होते हैं। हर एक का स्टाइल ही फर्क होता है, चॉइस ही फर्क होती है। जरूरी नहीं कि कीमती कपड़े बहुत अच्छे हों, कई दफा सस्ते कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं, किसी की चॉइस ही इतनी अच्छी होती है। वो आम चीज पहनता ऐसे लगता है इतनी सजी सवरी, कोई बहुत महंगी भी पहन ले तो बताना ही पड़ता है कि ये गुलाम अहमद का था, फर्क होता है ना। तो इन चीज़ों पे कभी किसी को जज ना करें। इमाम मालिक के बारे में आता है कि वो जब दरस हदीस देने के लिए जाते तो बेहतरीन लिबास पहनते, और शायद आपको पता है कि नहीं, इमाम मालिक बहुत अमीर थे, अल्लाह ने हर तरह की मिसालें रखी, तो लोगों ने उनका ये फ़र्क देखा कि बहुत अहतमाम करते हैं और मर्द तो वैसे भी इतना अहतमाम नहीं करते। और दूसरी चीज़ क्या देखी कि जो एक जोड़ा पहनते वो दोबारा कभी ना पहनते। कहा क्यों? आप जरा इसकी वजह बताए। कहने लगे कि इस साहिब हदीस की तकरीम के लिए अच्छे कपड़े पहनता हूँ, इज्जत देने के लिए। और इसी तरह से दोबारा क्यों नहीं पहनते? कहते कि ये कपड़े मैं खुद थोड़ी बनाता हूँ। मशहूर शख्स थे, चारों तरफ से लोग उनसे फैस लेते थे, कोई एक मुल्क से आया तोहफे में ले आया, दूसरी तरफ से आया ले आया। कहते लोग तोहफे तहाइफ में जब देते हैं तो मैं उनकी खुशी के लिए एक बार पहन लेता हूँ और उसको उतार के सदका कर देता हूँ। लोग कहते हैं वो हर रोज एक नया जोड़ा पहनते हैं, अल्लाह की नज़र क्या कि हर रोज एक सदका करते हैं। बात समझे? एक नया जोड़ा आए तो एक पहला दे दें तो आपको वो जोड़ा चुभेगा भी नहीं, नुकसान भी नहीं होगा। और आपको तो एक इमाम मालिक के दिल का हाल क्या था कि एक दफ़ा हदीस पढ़ाने बैठे तो गालिबन 50-60 बार या इससे कम हो बेश, मुझे ज़बानी याद नहीं इस वक्त, बिच्छू ने डंक मारा और वो सी भी नहीं करे। आखिर इतनी जब तकलीफ हुई तो आंख से आंसू निकले, तो दूसरों ने देखा तो फौरन उसको मारा, और बाद में पुश्त पे देखा तो मुझे सही याद नहीं लेकिन 50 के करीब उसको डंक थे। तो लोगों ने कहा जब बिच्छू ने पहली दफ़ा डंक मारा तो आप क्यों नहीं हिले? तो कहते थे इस हदीस की महफिल की तकदीस के लिए नहीं हिला। क्योस नंबर पाओ, मदीना में जाते थे तो जूता नहीं पहनते थे इज्जत की खातिर, ऐसी उनका अमल था। तो दिल में इतना तकवा हो तो ये कपड़े तो कुछ कहते ही नहीं है, और तकवा ना हो, बंदा अंदर से बेनमाजी हो और अल्लाह से दूर हो, तो आप हजारों का जोड़ा पहन कर आप कैटवॉक करें या आप गैरों मर्दों को दिखाएं, औरतों को दिखाएं, उसके अल्लाह की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। तो आज के दौर में क्या करना चाहिए, किस चीज़ को इज्जत देनी है? अब ये एक लंबा टॉपिक हो जाएगा इधर, इसलिए मतलब बात की जरूरत नहीं, लेकिन जब कभी आप दावा के लिए निकलें, एक आपका डेली डे टू डे लाइफ जिंदगी की है वो तो एक और चीज़ होती है, लेकिन जब आप दावा के लिए निकलें जैसे लोग होंगे वैसे कपड़े पहन के जाएं। वरना वो अपने दिल की खिड़कियां दिमाग की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ये तो कोई थर्ड क्लास है, इनको क्या पता। अब क्या अगर वो कीमती जेवर पहनते, आप भी पहन लीजिए ताकि इनको ये ना लगे कि दीन मांगता है। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि आज के दौर में दीन को इज्जत दिलाने के लिए अच्छे कपड़े पहन के जाएं कहीं, ताकि लोग ये ना कहे कि दीन वाले मंगते ही होते हैं और ये गरीब ही होते हैं और ये हमारी चीज़ों पर नजर रखते हैं। तो अच्छे या बुरे का कोई मकसद नहीं है, असल बात यह कि आपके दिल में किस चीज़ की कितनी वैल्यू है। अब इसके बाद आप देखते हैं कि जब दिल में शुक्रगुजारी आती है तो उसका इजहार कैसे होता है। पांच चीज़ें हम देखेंगे कैसे हो। अब इंशाल्लाह जब ये टॉपिक पूरा होगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे और फिर जो क्वेश्चंस आपके जहनों में आएंगे आप ज़रूर पूछिए। पहली बात यह कि अच्छे से अच्छी चीज़ पहने, अच्छे से अच्छा खाएं, लेकिन खुशू और खुदू का इजहार करें। मैं आपको कोड वर्ड्स दूंगी, अपने हर जोड़े को क्रिटिकली एक दफ़ा ज़रूर जाके देखें, हैंगर पकड़े और उसको देखें, इसको पहनकर खुशू खुदू का इजहार होता। जो कपड़ा सतरी ना पूरा करे, जिसकी बाजू भी गायब है, जिसका गला भी टेढ़ा मेढ़ा है, जिसकी कमर नहीं खुलती दांदती, आप बताइए क्या उसको पाकर खुशू खुदू हो सकता है। या आप अपने लिए क्राइटेरियन पे, हम कपड़ों ही की बात कर रहे हैं, बाकियों पे आप खुद ही कर लें। गाड़ियों पे ले लीजिए जिस पे, क्या इस गाड़ी से निकल कर खुशू का इजहार करती हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि अल्लाह सुबहाना तआला से मोहब्बत का इजहार हो। जब वो नेमत देखें आपके, अल्लाह ताला आपने मुझे इतनी प्यारी चीज़ें दी हैं, अब आप इसको भी ले लीजिए। जब कोई कपड़ा जोड़ा जूता मिलता है तो देख के कहती है, अल्लाह ताला आज फिर कितना अच्छा सूट आपने दे दिया। तीसरी चीज़ क्या है कि अल्लाह की नेमतों का दिल की गहराई से इतराफ भी हो और ज़ुबान से इकरार भी करें। हम कहते रहने दो, अब ज़ुबान से कहने की क्या जरूरत है, ठीक है ना मिल गया। आजकल मैंने देखे बच्चे खुश नहीं होते, कम देखा मैंने खुश होते। जिन माओ ने बच्चों के बहुत लाड किए ना, बचपन से उनको नए नए चीज़ें ला ला के दी, खिलाई पिलाई पहनाई उड़ाई, उनको अब बड़ी से बड़ी नेमत बड़ी नहीं लगती। तो अभी से आप अपने बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि हर नया कपड़ा जूता पहनकर दो नफिल पढ़ो, अल्लाह की तारीफ करो। दिल से एहसास होगा तो इंशाल्लाह कदर भी होगी। फिर चौथी चीज़ है कि अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़ानंदोज हो और इसकी हमदोसना बजा लाए। अब होता क्या पता, चीज़ें तो हम बना लेते हैं, इंजॉय कोई नहीं करते। हमारी कपड़े सबसे ज्यादा वो कहाँ गुजारते हैं, वार्डरोब्स में। तो वार्डरोब इंजॉय कर रही है ना उसको, आप तो नहीं कर रहे। हमारे जेवर को कौन इंजॉय कर रहा है, बैंक के लॉकर्स। कपड़े बनाए फिर पहने, नहीं तो ना बनाए। वो जोड़ा जुर्म है आपके लिए बनाना जिसको आप एक दफा पहनकर हैंगर में लटका दें और उस पर 50-60 हज़ार रुपया लग गया। दूसरी शादी पे इसलिए नहीं पहनना कि आप दोबारा फिर करीबी शादी पे ये पहने, भाई चलो वो दूर की शादी है वहां पहन लो, नहीं अब इतनी दूर की शादी में इतना भारी जोड़ा पहन जाए, तो भाई आप एक दफा किराए का ही ले लेते। ये जुल्म है। नेमतों को फिर इंजॉय करें, जेवर है तो पहने, नहीं तो फिर अल्लाह को दे। आपने छुपा छुपू के चीजें रखी, आपको उससे कभी फायदा नहीं होगा, वो आपकी बात लोग रोएंगे कि इनको क्या मिला, देखो ना खुद इस्तेमाल किया ना किसी और को दिया। फिर इसी तरह पांचवी एक कैफियत क्या हो कि अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल मकरूहात और मनहियात को ना बनाए बल्कि अल्लाह की रजामंदी की जगहों में करे। वही बात है कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे खाओ पियो, तो फिर अल्लाह की रजा के काम करो। मोहम्मद बिन काब कहते हैं कि शुक्र अल्लाह का तकवा और इसकी इताअत फरमा बरदारी के कामों पर अमल करना। अल्लाह का तकवा शुक्र कैसे, कि यानी जब हम शुक्र करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छे काम करते हैं, तो गोया कि हम अल्लाह से डर की एक अमली तस्वीर होते हैं। इसी तरह इमाम इब्ने कय्यम कहते हैं कि शुक्र की बुनियाद नेमत देने वाले के सामने आजजी, तजल्लुल और मोहब्बत का मुजाहरा करना और इसके इनाम का एतराफ करना। आप जब किसी नेमत को नेमत ही नहीं समझते, उसी की कदर नहीं करते, तो आप उससे गाफिल हो जाते हैं ना। तो लिहाजा फिर नेमत की कदर ना हो तो नेमत देने वाले की भी कदर नहीं होती। तो खुलासा क्या निकला कि अल्लाह को भी याद रखे, नेमतों को भी इंजॉय करें। आप इंजॉय करें दुनिया की चीज़ों को, अच्छा बर्तन घर में खुद इस्तेमाल कीजिए, इंजॉय करें, अच्छा लगता है, आपका मूड चेंज हो जाता है। आप जरा एक बेडशीट आपके घर में है कोई बात नहीं, आप अच्छा सा बिछा लीजिए। हमारा हाल ये होता है अक्सर कि दुनिया की चीज़ें जमा तो करते हैं इस्तेमाल नहीं करते, ये वबाल है। इस तरह करना इंसान को खुशी नहीं देता, और ख़ास तौर पर जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत के एहसास के साथ वो चीज़ें बिछाते हैं संवारते हैं, फिर आप कहते हैं अल्लाह जन्नत में तो ऐसे ही देगा, ये मैंने सोचा था तूने मुझे दे दी, मैंने ये दिया वो दिया, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे फिर आपको ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत भी होगी। हमें जो भी स्किल मिली है ना, आप सब चले खुद से एक सवाल करके जाएं, कल तक सोच के आइएगा मुझे क्या नेमत दी है अल्लाह ने और उसका शुक्र बिल जवारे कैसे करती हूँ। ٹھیک ہے، لکھ کے لائیے گا. جزاک اللہ خیر.